Om Shanti. Welcome to this session, The Art of Balancing. Meditation is actually practiced for, so far we have understood a bit about meditation. What do you think, why is meditation important? We are not going to discuss on meditation in this session, but just to have your perception, because somewhere or the other it is linked with this session. Synchronizing body and the mind, yes. हम जब अपना हम करते हैं प्रैक्टिस, उसमें ना शब्द होते हैं, ना गीत होता है, ना मंत्र होता है, कुछ भी जरूरत नहीं है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सभी अलग अलग चीजें, मेडिटेशन भी कई प्रकार का होता है. हम जब राजयोग मेडिटेशन की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा ओरिएंटेशन हमको देना होता है, इसलिए हम लोगों ने कमेंट्रीज का प्रयोग किया. मुझे शायद लगता है पसंद भी आया होगा कमेंट्री से करना. आप लोगों ने कल भी, अगर आपको नहीं है तो हम आपको साइलेंस में भी करा सकते हैं, यदि आप लोग सब कहते हैं. एक्चुअली मेडिटेशन भी कई, अब जैसे जापान में एक सेक्ट है चिंकुन शेकी. नाउ व्हेन दे मेडिटेट, उनका प्रोसीजर क्या है, वो एक छोटी सी रेड लाइट 3 फीट डिस्टेंस पे, 3 फीट हाइट पे रखते हैं और उस लाइट को ही देखते हैं और कोशिश करते हैं उस लाइट के ऊपर ही आधारित विचार चले. ये लाइट इतनी बड़ी है, ये ब्राइट हो रही है, ये धीमी हो रही है, ये उनका फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है. लेकिन ये हमारे फॉर्म ऑफ मेडिटेशन से बहुत भिन्न है. तो जैसे मैंने कहा, यदि आप सबसे बड़ा योग शास्त्र देखें, जो कि है श्रीमद् भगवद गीता, तो उसके अंदर यदि आपको वर्णन मिलेगा योग का, कई प्रकार के योगों का वर्णन है. इसका मतलब एक प्रकार का योग नहीं है. और जिसके अंदर सबसे उच्च योग बताया गया है राजयोग, जो कि इस समय पे बहुत लोग नहीं जानते हैं, उससे अवगत कराने का ये प्रयास है. हठ योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत प्रकार के योगों का वर्णन है. और अंत में ये कहा गया, इन सब योगों का जो निष्कर्ष है, जो समराइजेशन है, जो एसेंस है, वो है राजयोग. मैं यहाँ पे किसी को,
हाँ जी, आपने योग को समाहित कर दिया
जी,
केवल ध्यान की बात करें.
दरअसल आप ठीक बात कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन पहला तो हमारा मोटिव यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल वही बता देना जो हम करते हैं वैसा नहीं है. ये जो ट्रेनिंग है उसका लक्ष्य है मोटिवेशन मंत्रास, उसका एक कंपोनेंट मेडिटेशन. क्योंकि आप स्थान पे आए हैं तो जानेंगे तो अच्छा है. इस उपलक्ष्य से कुछ सेशंस मेडिटेशन के भी रखे गए हैं. अदरवाइज वी डोंट हैव दैट मोटिव दैट यू ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द वे वी डू. यू कैन टेस्ट, इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल यू कैन डू इट. एंड फॉर एवरीबडीज कन्वीनियंस, हर एक के कन्वीनियंस के, हर एक को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये हमारा प्रयास रहता है. बाकी हम लोग जो ऑलरेडी, क्योंकि ध्यान का अर्थ ये नहीं, हम ये नहीं समझते कि हम जब बैठ, क्योंकि हमारा ओपन आइड मेडिटेशन है, क्लोज आइज भी नहीं है, हम आंखें बंद भी नहीं करते हैं मेडिटेशन के अंदर वास्तविकता में. क्योंकि हम ये मानते हैं कि मेडिटेशन एक क्रिया नहीं है, एक वे ऑफ लिविंग है. योगी वो नहीं होता जो बैठ के योग करे, योगी जीवन जिसका निरंतर रहता है उसको हम सच में कहेंगे. अगर मैं बैठी हुई हूँ और ध्यान में हूँ और शांत हूँ तो वो कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन जब मैं चलते फिरते कर्म में भी शांत रहूं तब कहा जाएगा योगी. तो उसके लिए हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आना चाहिए. कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है. तो ये जो भी माध्यम आपको बताए गए, ये एक तरह से एक ऐसी चीज से अवगत कराने का एक प्रयास था जिसको हमने अनुभव किया, उसके आधार से कॉन्शियसनेस बिल्डअप करना आसान है. तो उस चीज को बताने के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया. बाकी ऐसा नहीं है कि ये शब्दों का प्रयोग करके ही आप उस चीज को समझ सकते हैं. हम जब मेडिटेशन करते हैं उसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उसमें आपको ध्वनि की भी आवश्यकता नहीं है, ये रेड लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां वो उस चीज को समझने के लिए शुरुआत में हमने भी इन चीजों का आधार दिया था। अब जब समझ गए हैं तो अब आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस प्रयास के लिए था। इसमें रिचुअलिस्टिक कुछ भी नहीं है, राजयोग के अंदर रिचुअलिस्टिक कुछ भी नहीं है। आपको एक स्थान पे बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, हम बस में लोकल ट्रेन में खड़े होते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो भी एक मेडिटेटिव स्टेज में है, क्योंकि मैं इस कॉन्शियसनेस में हूँ कि मैं कौन बात कर रही हूँ और मैं किससे बात कर रही हूँ और किस लेवल पे। हमारा कनेक्शन केवल ह्यूमन लेवल पे नहीं है, हम जब स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होते हैं, दैट कॉन्शियसनेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन इज टू अचीव दैट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। सो मेडिटेशन का क्या प्रोसेस है और क्या मेथड है और क्या टूल्स यूज हो रहे हैं, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन इटसेल्फ इज अ टूल टू रीच अप टू दैट कॉन्शियसनेस। एंड एक बार आपकी वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है, फिर हम मेडिटेशन करते नहीं है, हम उसी लाइफस्टाइल में रहते हैं, हम उसको जीते हैं। दैट इज द अल्टीमेट एम। सो लेट्स बिगिन विथ टूडेज डिस्कशन। तो हम ये बात कर रहे थे, आप सभी ने अपने, कुछ लोगों ने अपने व्यूज बताए, थैंक यू फॉर दैट। दिस टॉपिक ऑफ आवर्स इज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आप लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज एज इम्पोर्टेंट फॉर अ 8-year-old किड एंड एज इम्पोर्टेंट एज अ पर्सन हु इज क्रॉस हिज 60s। लेकिन आप लोगों की इसमें कार्य में बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक्चुअली द वर्क ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर इज लाइक अ टाइटरोप वॉकर जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। यू हैव टू फोकस एट द डेस्टिनेशन, but the journey is equally important. A little bit heavier step on one side can lead to the complete downfall of the whole system. So ek kadam is yatra ka utna hi mahatvapurna hai jitna ki us destination pe pahunchna. To is yatra ko, can we just have the phone switched off? So ye yatra bhi itni hi important hai. कई बार हम कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज को अंत मान रहे हैं वो अंत है ही नहीं। हमने जो जो प्रोसेस में किया वो उस अंत के बाद में हमारे सामने आएगा। इट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूम। आइंस्टाइन सेड दैट एट एवरी टाइम एवरी सेकेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। You can choose to be wherever you want to be. How is this moment related to my past? Not just thinking, even if you're not thinking. Because at a time, I can think about one thing. Mera mind jo hai, wo bahut jaldi switch kar sakta hai. That's true. Lekin phir bhi, at an instant, I am thinking about one thing. Maybe the earlier instant or the next instant I might be somewhere else, but this instant one thing is in my consciousness. It could be either past or present or future, but still my present, isn't it an influence of my past? What I did yesterday is my today, and what I do today will be the base of my tomorrow. So in that way, every moment is a combination of my past, my present and my future. So I cannot say reaching my destination, I have actually completed my journey. What all I did, and even after reaching the destination, what all I am doing is making my tomorrow. So the journey is never actually coming to an end. I am always in a loop. So balancing humko उस यात्रा में चाहिए। एंड देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस जिसमें हमको ये बैलेंसिंग करनी होती है। द तो अभी हम इनको एक्सप्लोर करेंगे एंड लेट इट बी इंटरेक्टिव. आप लोगों को भी कुछ ऐड करना है, यू आर फ्री, कुछ प्रश्न करने हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क. अगर मुझे लगेगा कि इसका उत्तर आगे आने वाला है, देन आई विल लेट यू नो कि इसका उत्तर आगे आ सकता है. अदरवाइज आई विल ट्राई टू क्लियर द क्वेश्चंस एज एंड व्हेन यू पुट फॉर द क्वेश्चंस. सो लुकिंग एट दीज टू पिक्चर्स, आपको क्या दोनों ही देखिए लगभग एक सी ही सिचुएशन है. एक के ऊपर एक रखे हुए हैं एंड देर एट अ हाइट एंड देर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट डू यू फील बोथ ऑफ देम आर इन अ बैलेंस स्टेट? ये वाला इम्बैलेंस लग रहा है, दैट साइड एंड दिस साइड. Why do you feel that this is imbalanced and this is the top one is imbalanced and the bottom one is not?
The base is more wide.
So which gives us a little bit of message that to have a proper balance, balance kahan hona chahiye? Foundation pe. Even jo top wala stone hai, वो भले ही टॉप पे है, लेकिन वो टॉप पे है इसलिए इम्बैलेंस है, इसलिए नहीं है. लेकिन उसका बेस जो है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए लग रहा है कि वो शायद जल्दी गिर जाएगा. तो पॉइंट नंबर वन, फॉर बैलेंसिंग इट इज द बेस दैट हैज टू बी कंप्लीटली स्टेबल. आई वुड मेंशन द वर्ड स्टेबल एंड नॉट बैलेंस्ड, बट एक्चुअली स्टेबल, स्थिर. We will use this point later on, right? So, are we on the edge or at peace? Peace is that neutral situation. जब आप balanced हैं, ना यहाँ हैं और ना वहाँ हैं. Unhappiness is the on the negative side. Happiness, bliss is on the positive side. And peace, shanti is the neutral, stable state. ना यहाँ है नीचे और ना. So now a balanced personality, it is a small, very scientific and psychotherapeutic test. Okay, before that we have a few. Now why I have mentioned this Jesus Christ on the cross as a balanced personality? Why do you think? What is the main feature that you can relate to this? When you see this image, what is the main feature that you can relate to in the terms of balance? I think all of us know this fact that when he was being crucified, what were the words, what were the feelings he was uttering? He was in immense pain. The body was in immense pain. But what were the feelings? Oh God, Father, please forgive your children because they don't know what they are doing. So even in that moment where anybody and everybody, it's very easy to be carried away by anger, by frustration, by hurt, by, you know, unhappiness and everything, a grief. What were the feelings that he had that time? That of love and forgiveness. Looking at another, what does this signify? Is above everything. In the middle of the ocean, with turbulent waves coming from here and forth, being resting on the serpent, still he is so relaxed. Yani ki hamare aaspaas koi paristhiti na ho aur hum kahe hum to bahut shant hain. That is not reality. Reality is jab charo taraf halchal ho, मुसीबत मेरे सर पे हो और फिर भी मैं कहूं मैं शांत हूं. नाउ अ लिटिल चेक ऑन द सेल्फ. नाउ वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैलेंस पर्सनैलिटी. नाउ लेट अस हैव इट इज अ सेल्फ एनालिसिस. यू नीड नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ दैट, सो यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. So we have a bit few questions, and we have three options for every question. Give yourself 1 mark for the first option, 2 marks for the second option, and 3 marks for the third option. So you can calculate your score as I scroll down the questions. I will read the questions for you so that you need not be distracted looking there and then writing it. So when there is a discussion on a controversial topic, your tone of voice becomes persuasive and loud. How often does this happen? Option 1, never. Option 2, sometimes. And option 3, always, all or almost always. So give yourself 1 mark if you have the option 1. If you are on the option 2, then 2 marks and 3 marks for option 3. The next question is, I get irritated when things don't work the way I want. Option 1, never, which means I never get irritated. Option 2, I sometimes get irritated. And option 3, I always or almost always I get irritated. Number 3, when someone who you know is misinformed and that person confronts you, you already know that there is a misunderstanding and the person is confronting you, then how often do you start preparing your corrections while he is speaking? अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है लेकिन हम पहले ही अपने मन में उनका जवाब प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं. So how often does that happen? Option 1, never. Option 2, sometimes. And option 3, always or almost always. Next is, when something unexpected forces you to change your plans or accept new ideas, how often do you feel comfortable? Now here the options are reversed. Option 1 is always or almost always, means I'm always comfortable in changing my plans and accepting new ideas. Option 2, I'm sometimes comfortable but sometimes not. And option 3, I am never comfortable changing my ideas or accepting new plans on a short notice. The fifth question is, if I am in a state of conflict with someone, I can close off communication with him. You can stop talking, stop seeing each other if you are in a conflict with somebody. How often? Option number 1, never. No matter how much is the conflict, but you still keep on the communication. Option 2, sometimes. And option 3, always or almost always I close off the communication. The next set of questions in continuation. Do you find the weakness in most of the people you meet? Jab bhi kisi ko milte hain to pehle unki kamiyan hi dekhte hain. Is yahan ye kami hai, isne ye kyun kaha. So option 1, never. 2, sometimes. And option 3, always or almost always. Next is, how frequent do you feel demotivated to work for unrecognized reasons? Ye karna hi kyun hai? Why do I have to do? Why am I doing all this? So how often do you feel demotivated when you don't have any obvious rewards for or recognition for that about the piece of work? Never. Option 2, sometimes. Or 3, always or almost always. Next question, I change direction to avoid someone whom I don't like. Samne se aa rahe hain, so instead of the lift, you will prefer the staircase if you see the person approaching the lift lobby. Number 1, never. Number 2, sometimes. Number 3, always or almost always I change my direction to avoid someone I don't like. Next question, when work piles up and time is short, do you tend to make mistakes and start behaving rudely with people? Now here the options are reversed. First is always. I always or almost always I tend to behave rudely and start making mistakes when I have a lot of work pressure. Number 2, sometimes. And number 3, never. I am always calm and composed no matter how much the work is. And the last question. When my boss or a customer speaks with me, tries to speak with me, I instantly assume that he or she wants to discuss a problem or give me a negative feedback. Phone aata hai, aapko bula rahe hain sab. And on the way, I'm just checking myself, maine kya galti ki aaj? Maine to kuch kiya hi nahi, kyun bula rahe honge? Kya galti ho gayi hogi? Means you're trying to check ki aapne koi galti ke karan hi bula rahe honge. That negative attitude, how often do you have that? Number one, never. Number two, sometimes. And number three, always or almost always. Now you can sum total your score for these 10 questions. So your score will be somewhere around 10 to 30. 10 is the minimum and 30 is the maximum. You can keep the scores with yourself. And my balance questions. Now, if it is 25 to 30, I need to recognize the reasons for my behavior, as these may lead to an imbalanced lifestyle in future. If it is okay now, but then it can lead to something, a negative outlook in the future. 25 to 15, I usually have a stable mindset which is not easily disturbed by external situations, but I have a fair scope of improvement. And 10 to 15, the idealistic one, I am doing good and maintaining my balance at different situations, but I need to work to maintain it. At least maintenance requires some, sustenance requires some effort. So you can keep the scores for yourself. And now, let us think about the causes of imbalance. Those 10 questions were in 10 situations in a way. So you can take those also and you can find out, let's discuss, what are the reasons that cause imbalance in one's personality. Aap batate jaiye, I will start writing them on the board. Top of the list, the king of all, yes, ego. Lack of knowledge. Yes. I can say assumptions, because preconceived notions is sometimes about people, but assumptions can be for people, for situations. Judgmental approach. A part of ego. Lack of empathy. Impatience. पहले आ जाना चाहिए था ये, but देर आए दुरुस्त आए. Anger is one of the major things that spoils the whole situation. Anything else? Yes. Fear or insecurity. Yes. Attachment is not necessarily with some person. It could be with your idea also. It could be with my seat also. भाई मैं यहाँ से गई थी, अब मैं वापस आई हूँ पानी पीकर के, तो मेरी सीट किसने ले ली? So it is, even that is attachment. बैठना ही है ना, it could be anywhere. So attachment is very, in fact, जो गीता में कहा गया है, अंतिम जो पाठ पढ़ाया गया है 18वें अध्याय में, जो लास्ट शिक्षा दी गई है, वो क्या है? Nashto moha smritir labdha, which means nashto moha, the plethora of ideas and the root of all the knowledge is to be detached. Nashto moha, moho ko nasht karo, kyunki jo paancho hi vices hum lete hain, kaam, krodh, lobh, moh, ahankar, iska jo jad hai wo hai attachment to the the idea that I am the body. इसको हम कहते हैं यही ज्यादा अटैचमेंट टू द आइडिया दैट आई एम दिस बॉडी. व्हेन आई एम दिस बॉडी एंड माय आइडियाज आर नॉट एक्नॉलेज्ड, इट लीड्स टू एंगर. व्हेन आई एम द बॉडी विच इज सुपीरियर, गुड लुकिंग एंड वेल एजुकेटेड एंड इन अ गुड पोजिशन, इट लीड्स टू ईगो. व्हेन आई एम अ बॉडी एंड समथिंग बिलोंग्स टू मी, दैट इज अटैचमेंट दैट वी यूजली कंसिडर, ये मेरा है, मोह उसमें हो जाता है. लेकिन वो मोह भी क्यों आया, क्योंकि मेरा इसमें मोह है तब इससे जुड़ी हुई चीजों में मोह है. सो एवरी फॉर्म ग्रीड, इट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. इतना मिल गया अभी और मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये तो मेरा है ही, विच इज अटैचमेंट. लेकिन जो नहीं है वो भी मेरा हो जाए, दैट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. So it is a very deep, it has a very deep rooted meaning, attachment, right? Anything else? Intolerance, jealousy, yes. Yeah, fear, isme sare fear aa gaye. Competition. Actually, उस दिन भी ये बात चल रही थी competition की. The first day, I was about to interrupt and say there is nothing like negative and positive competition. Competition is competition. हम जिस चीज को positive competition कहते हैं, actually उसके लिए एक better शब्द है जिसको कहते हैं inspiration, motivation. Which is a positive term. Competition कहते ही it has a negative element of comparison. There cannot be competition unless there is comparison. But when I talk about inspiration, it does not have comparison. It is different because inspiration means, मान लीजिए आप है, आपकी quality है hard work. और मैं ये देखती हूँ आप हार्डवर्क करके दिनों दिनों रात लगा करके आप कोई चीज को अचीव करते हैं. मैं कहती हूँ कितनी बढ़िया क्वालिटी है हार्डवर्क. अब मान लीजिए मैं कहूँ मैं तो हार्डवर्क नहीं कर सकती. कंपैरिजन और कंपटीशन वुड मीन मैं भी कोशिश कर रही हूँ हार्डवर्क करने की जो मैं नहीं कर सकती, और मैं नहीं कर पा रही, और मेरे को फिर भी फेलियर मिल रहा है और मैं संतुष्ट नहीं हूँ. लेकिन इंस्पिरेशन मीन्स आपकी क्वालिटी है हार्डवर्क. जिस तरह से आपने हार्डवर्क को यूज करके कोई चीज अचीव की, मेरी क्वालिटी है ऑनेस्टी, मैं अपनी क्वालिटी यूज करूं. व्हाई शुड आई वांट टू बी एन इमिटेशन ऑफ यू. आई एम एन इंडिविजुअल बीइंग, आई हैव एन इंडिविजुअल सेट ऑफ क्वालिटीज, लेट मी यूज माय सेट ऑफ क्वालिटीज एंड एक्सेल. व्हाई डू आई नीड टू कंपेयर माय क्वालिटीज विद योर्स एंड रेट माय सेल्फ लेस देन यू और मोर देन यू एंड ट्राई टू इम्बाइब. इट इज गुड टू इम्बाइब योर क्वालिटीज, बट मेक ट्राइंग टू मेक दैट अ बेस and being equal to you in that sense, that is competition, which is rooted out of comparison. There is no comparison in any two beings on this earth. They were and they will never be equal, because we are all unique, we are all individual. That is why the term individual, matlab hum alag the, hum alag rahenge. Atma hai hum sabhi, aur hum sabke andar wahi saat gun hai. लेकिन उन गुणों को हम कैसे यूज करते हैं वो हर एक का प्रपोर्शन डिफरेंट है. नो टू सोल्स कैन बी सेम. एक ही घर में जन्म लिए हुए, एक ही माता पिता के पास अगर दो जुड़वा बच्चे भी जन्म लेते हैं, उनकी एक ही परवरिश होती है, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही से कपड़े पहनते हैं, एक ही से खाना खाते हैं, एक ही टिफिन से खाना खाते हैं, एक ही बैग, एक ही स्कूल, तो भी वो एक नहीं है. जिस दिन जन्म लिया था दो बच्चों ने, उस दिन भी एक नहीं थे. कोई बच्चा थोड़ा कम रोता था, कोई ज्यादा रोता था, किसी को भूख ज्यादा लगती थी, किसी को गोदी पसंद थी, किसी को खुले रहना पसंद था. जब जन्म से ही एक नहीं है तो हम एग्जैक्टली एक तो कभी भी एक से तो कभी हो ही नहीं सकते. थैंक यू फॉर शेयरिंग. मुझे पता नहीं था क्योंकि आई एम नॉट दैट मच अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द मीडिया, बट वेरी वेल सेड. वो कंपैरिजन अच्छे के लिए किया जा रहा है, कोई उसको अच्छा लेकर के फूला ना समाए, लेकिन उसमें भी बोझ लग रहा है उसको. राइट राइट और राइट. तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंड आई एम श्योर इफ वी हैव मोर टाइम वी कैन शोन एंड वी कैन हैव मोर लिस्ट, बट कुछ निकाले हैं विच आर कॉमन. यस, राजा है ये तो. इज द किंग ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ईगो. पहली बात तो द नोशन दैट ही हैज सेंट अस इज नॉट 100% true. It's not he who has sent us. कि आप जाओ लड़ो मरो और हम तमाशा देखें, ऐसा उनका भाव नहीं था. He has made us in the form. अब आप सोचिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. एक व्यक्ति है, अभी आप ही लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, कितना पढ़ाई पढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कितने करोड़ों लोगों ने दिया होगा, उसमें से आप लोग सेलेक्ट हुए, और सेलेक्ट होने के बाद में, इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद में आपको कह दिया जाए घर बैठो, नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है. हाउ वुड यू फील? वुड यू फील दैट यू हैव सॉल्व द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आज इतने पढ़ लिख करके भी जो है यूथ, वो घर में बैठा है, अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज देयर स्टेट? सो सोल्स आर मेड, दे आर, देयर इनहेरिट नेचर इज टू कम एंड एक्ट. उनको अगर कह दिया जाए घर बैठो, दे विल नॉट बी सैटिस्फाइड. सो वी आर ऑल हेयर बिकॉज ऑफ आवर चॉइस, नंबर वन. सो वी डिसाइड, एंड इवन आफ्टर कमिंग हेयर वी आर नॉट डायरेक्टेड बाय हिम, वी वर गिफ्टेड विद इन इनहेरेंट चॉइस. हमें अपना मन दिया गया, हम सबको अपनी अपनी बुद्धि दी गई. मैं किसी और की बुद्धि पे नहीं चलती. अगर मैं किसी का आइडिया मानती भी हूँ तो भी उनका आइडिया कब मानती हूँ? जब मेरी बुद्धि उसको एक्सेप्ट करती है. तो हम किसी के भी कहे पे नहीं चलते. वी ऑल हैव अ पावर टू चूज एंड वी आर ऑल डूइंग दैट. आपका अगर हमारा भाग्य, आपका माना इन सबका, अगर भगवान भाग्य लिखते, सोचिए क्या भाग्य होता. आप अपने बच्चों के लिए अगर भाग्य लिखें, कैसा भाग्य दिखेंगे? अच्छा, जो अच्छा बच्चा होगा बात मानेगा उसका परफेक्ट लिखेंगे, जो बात नहीं मानता उसका इम्परफेक्ट लिखेंगे? ये तो है ही ऐसा. प्रैक्टिकली अगर आप देखें, अगर घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा होशियार है, अपने आप अपना काम कर सकता है, दूसरा कमजोर है, माता पिता का ध्यान किस पे ज्यादा रहता है? क्योंकि पता है जो होशियार है वो तो अपना कर भी लेगा, लेकिन किसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा? तो परमात्मा कमजोर बच्चों को छोड़ नहीं देता. अब उनके हाल पे जाओ भुगतो, कमजोरों का और ध्यान रखता है. मैं एक बार एक के घर गई, वहां पे एक फंक्शन था. तो वो जो द लेडी ऑफ दैट हाउस, शी वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्रह्म कुमारी, शी आर इन्वाइटेड us to a function in her house in which we were supposed to give a talk. So नीचे उनका जो एरिया था वहां पे टॉक चल रही थी, और ऊपर बच्चे जो थे बैठ के उनके टीवी देख रहे थे. तो किसी कोई चीज लेनी थी ऊपर से, उसके लिए मैं ऊपर आई, वो समझ नहीं थी. मैं देखा बच्चे जो है वो टीवी देख रहे हैं, और टीवी पे एक एक्शन मूवी चल रही थी जिसमें एक व्यक्ति को खूब पीटा जा रहा था, और जितना उसको पीटा जा रहा था उतना ही बच्चे खुश हो रहे थे, और वो उछल रहे थे और कह रहे थे और मारो और मारो. ये देख के थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने बोला वो उसको खून खून निकल रहा है वो. मैं तो बच्चों को समझाया, देखो बच्चे ऐसे नहीं करते, किसी की पिटाई हो रही है, आप खुश हो रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है. उनका जवाब था, दीदी अभी आपको पता नहीं है इसने क्या किया, ये कैसा व्यक्ति, आपको पता नहीं है इसने क्या किया और इसको क्यों पीटा जा रहा है. उस चीज से मेरे एक चीज माइंड में आई कि एक्चुअली में हम जब ये सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, हमें पता ही नहीं था पहले के एपिसोड में हुआ क्या है. हम यही एपिसोड देख रहे हैं, हमारे बीच में इस रिट्रीट सेंटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से गीता दीदी, आदरणीय दीदी हमारे बीच में आइए दीदी, दो मिनट दीदी आइए आइए प्लीज दीदी दीदी एक हमारे बीच में गीता दीदी पहुंच चुके हैं. शी इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस रिट्रीट सेंटर. आप आशा दीदी से तो मिले ही हैं, आप भी इस रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं. साथ साथ श्री फोर्ट सेंटर हमारा जो है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, वहां भी आप डायरेक्टर हैं, उनसे जुड़े हुए सेंटर्स के डायरेक्टर हैं. बाद में आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस संस्था के ज्ञान और योग का लाभ उठाया और आप और आपका पूरा ही परिवार इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हो गया. सो आप आपके युगल, युगल हम कहते हैं स्पाउस को, वो आपकी बच्चे, रिश्तेदार, सारे रिलेटिव्स इस ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी बने, समर्पित हुए. तो आपसे भी हम सुनेंगे, दीदी से सुनना चाहेंगे ना. दीदी आपको आना है. तो एक्चुअली हम जब क्वेश्चन करते हैं, जो हमने अभी देखा लैक ऑफ नॉलेज एंड अजम्पशंस एंड जजमेंटल, ये सारे कारण हैं. जब हम सोच लेते हैं ऐसा क्यों हुआ, नो डाउट जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो जो हुआ वो हमने केवल उस कर्म का फल देखा. बीज तो बहुत पहले बोया गया था. कोई भी बच्चा, अगर बच्चे की बात करें, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है वो कोरा कागज नहीं होता. हम ना कभी खाली हाथ आए थे और ना ही कभी खाली हाथ जाएंगे. शरीर के हाथ खाली आए थे, खाली जाएंगे, लेकिन आत्मा संस्कार भर के आई थी. और जो भी इस जीवन में कर रही है वो संस्कार लेके अगले जीवन में जाएगी. जैसे 31 मार्च का क्लोजिंग अकाउंट इज ऑटोमेटिकली द ओपनिंग अकाउंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो कहने को ये फ्रेश फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन फ्रेश अकाउंट नहीं है. जो क्लोजिंग बैलेंस था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो अपने आप इस साल का ओपनिंग अकाउंट बन चुका है. ये हम पे डिपेंड करता है. योग का एक, अगर हम कर्म योगी उसी को कहा जाता है. तीन प्रकार के कर्म होते हैं, सुकर्म, विकर्म और अकर्म. हम अपने कर्मों को सुकर्म बनाते हैं या विकर्म बनाते हैं या अकर्म बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है. सुकर्म अच्छा कर्म जिससे अच्छा भाग्य, अच्छा फल मिले. विकर्म विकारों के वशीभूत, विकारों के इन्फ्लुएंस में किया गया कोई कर्म जिससे कि हमारा नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बनता है. और अकर्म जिसमें हम कर्म के प्रभाव से परे, कर्मातीत रहते हैं. तो ये जो प्रैक्टिस है राजयोग की, ये हमें उस कॉन्शियसनेस तक ले जाती है जब हमारे कर्म अकर्म बन जाएं, जब हमको योग करने का एफर्ट ना करना पड़े, आत्मा पर से कर्म का प्रभाव जो है वो हट जाए. For that we have to be in that consciousness 24/7, 365 days. जैसे मैंने कहा, आपका जो भी अभी का आपको मिल रहा है वो पहले का आपका लिंक्ड है. सबसे पहली बात तो ये है. नहीं नहीं, लेकिन होता जाएगा ये जरूरी नहीं है. ये हुआ आपके पास्ट कर्म के हिसाब से, ये आपको मिला अभी, वो तो ठीक है, जस्टिफाइड है. लेकिन अब इसके आगे जो होगा वो आपके हाथ में. हम सब, मतलब मैं एटलीस्ट बताती हूँ, और मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे यहाँ पे होंगे, हमारे फोर फादर्स कोई एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के नहीं थे, कोई ना कोई स्टेज पे हमारे फादर्स ने या हमारे फोर फादर्स ने स्ट्रगल किया है, जीरो से हीरो बने हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो उनके पास भी नहीं थी, मेरे हमारे पास है, तो वी हैव बीन लकी, हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो हम इतने करोड़ों आत्माओं में वहीं पे जन्म लिया जहां पे हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलने का साधन मिला। लेकिन हमारे ही फोर फादर्स ने, जिन्होंने हमें आज वो साधन उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में तो कभी स्ट्रगल किया होगा। सो जीरो से हीरो बनना या फ्रॉम द स्क्रैच अपने आप को बिल्डअप करना, हम कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है, देवर सेल्फ मेड मैन। तो अपॉर्चुनिटी ना मिले वो एक हमारा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन वो आगे प्रोपोगेट ना हो ये हमारे हाथ में है, वी हैव दैट ऑप्शन। हाँ जी, ये इस युग की देन है, कलयुग की देन है, ये मनुष्य जो है वो और जूनियों को भी अपने से उच्च मानता है, और वो भी हरेक की नहीं है, लेकिन मनुष्य के हाथ में वो चॉइस है, हम चाहें तो आत्मा देव आत्मा तक बन सकती है। और आज हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जिस रावण की हम बात कर रहे हैं, आज भी किया कल भी चर्चा हुई थी, वो एक्चुअली में और कोई नहीं, हमारे अंदर ही है। अगर आप इत्सेल्फ देखे, रावण का मतलब क्या है, राव मतलब रुलाने वाला, वण मतलब हरेक को, जो हरेक को रुलाए वो रावण है। दुर्योधन कौन है, दुर रीति से कमाया गया, दुर रीति से उपयोग किया गया धन। तो ये जो नेगेटिविटीज है, ये आज एक नहीं, सारी नेगेटिविटी सब में है। क्यों हो गया है, आप सुबह सुबह खाना बनाइए, सुबह सुबह 8:30 बजे खाना, आप लोग ने सबने ब्रेकफास्ट किया, कैसा लगा आप लोगों को, फ्रेश, अच्छा। वही चीज दोपहर में दी जाए आपको, कैसा लगेगा, ठंडा। शाम को भी वही दिया जाए रिफ्रेशमेंट में, स्टेल, एंड रात को नॉट एलिजिबल, एक्सपायर्ड। तो जब ह्यूमन सोल्स इस धरती पे उतरती हैं, ग्रेजुअली एक एक युग पार करते 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 वो स्टेज आ जाती है कि आत्माएं बिल्कुल ही डिग्रेडेड हो जाती हैं। दिस इज द स्टेज टुडे। आत्मा की जो क्वालिटीज हैं, राइट, उन जैसे अब ये आत्मा इज नॉट डिग्रेडेड, नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल सही, अभी इसके पहले भी हमने यही बात की, आत्मा प्योर है, लेकिन ये बहुत अच्छी टेबल है, लेकिन अगर इसकी सफाई आप 4 दिन नहीं करेंगे, इसके ऊपर धूल की परत तो आ जाएगी। ये टेबल तो अभी भी वैसी ही है, पर इस धूल की परत को तो आपको हटाना पड़ेगा। आत्मा डिग्रेड उस सेंस में आप नहीं कह रहे कि आत्मा की क्षति हो गई, उसका मतलब जी, उसका भाव ये नहीं था कि आत्मा घिस गई या आत्मा के अंदर कुछ घट गया, लेकिन आत्मा की जो वैल्यूज, जो आत्मा की पावर्स होती हैं, वो पावर्स एग्जीक्यूट करने की क्षमता आत्मा की कम हो जाती है। वाई, बिकॉज इट बिकम्स मोर अटैच टू द बॉडी। लेकिन प्रभाव नहीं, फर्क तो है, लेकिन प्रभाव आत्मा तो अकेली नहीं है, आप सत्य कह रहे हैं, शरीर के साथ ही प्रभाव पड़ा है। ये धीर धृति और स्मृति ही नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये स्मृति शरीर का तो हिस्सा नहीं है, ये स्मृति स्मृति जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर देती है, कभी कभी ऐसा होता है उसको अपनी पास्ट लाइफ की स्मृतियां भी रहती हैं, तो शरीर तो पीछे नष्ट हो गया, तो अब उस पास्ट लाइफ की स्मृति क्यों है, क्योंकि वो शरीर का हिस्सा नहीं है, वो आत्मा का हिस्सा है। So mind is the faculty of the soul. It is the faculty of the soul. The body does not have the mind. The body has the hardware brain in which the software mind operates. So everything has two components, the hardware and the software. Everything, the program is an output of hardware, software, both. देखिए जीवात्मा कर्म तो तभी होगा जब जीवात्मा है ना जीव अकेला कर्म कर सकता है ना आत्मा अकेले कर्म कर सकती है लेकिन वो कर्म का जो प्रभाव है वो तो आत्मा से ही जुड़ा है तभी तो संस्कार आत्मा में ही होते हैं राइट लेट्स नॉट गो वेरी डिटेल इनटू दैट नहीं विरुद्ध नहीं है भाई सब केवल समझने का एक एंगल है देखिए डिग्रेडेशन का अर्थ ये हो सकता है मैं आपको सपोज अब ये स्टील एक बर्तन है नहीं एक बार लेट मी स्पीक राइट ऑल दो इट इज फिजिकल मटेरियल जब मैं कहती हूँ कि मैंने शब्द जैसे कहा डिग्रेडेशन ना भी कहे आई डोंट माइंड लेकिन भाव ये था अगर मैं कहती हूँ कि ये पुराना हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वेट कम हो गया है वॉल्यूम कम हो गई है लेकिन इसके ऊपर मिट्टी की परत आ चुकी है इसके ऊपर जंक लग चुकी है जिसको अगर ठीक किया जाए तो ये अभी भी वही प्लेट है लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा परिवर्तन आया है अब ये उतनी नई नहीं है आपने एक गाड़ी खरीदी एक साल बाद उसको बेचेंगे वो सेकंड हैंड कहलाएगी राइट ऐसे ही आत्मा जब आती है जो हमने कल भी बात कर रहे थे सत्युग की और कलयुग के कंपैरिजन की तो सत्युग से और कलयुग के बीच में क्या होता है आत्मा तो वही है वो घिसी नहीं है वो कम नहीं हो गई है उसकी प्योरिटी भी अंदर सुप्त रूप में है लेकिन उसके ऊपर विकारों की एक परत जम गई है जैसे ही वो परत हटती है वो आत्मा तो शुद्ध पवित्र अंदर से थी ही अब डायमंड है अगर उस डायमंड में मिट्टी चढ़ी है तो वो चमकेगा नहीं है डायमंड ही उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है लेकिन उसको साफ करना पड़ेगा ताकि फिर से उसकी वैल्यू उसकी चमक आ सके तो उस रूप में नहीं कि आत्मा जो है अब वो आत्मा नहीं रही है वो डायमंड डायमंड नहीं है डायमंड तो डायमंड है लेकिन उसके ऊपर धूल मिट्टी की परत जम चुकी है जी। आत्मा शुद्ध है हम ये अनुभव करते हैं क्या क्या हो गया है एक और इलस्ट्रेशन आपको देती हूँ मे बी इट बिकम्स मोर क्लियर आपने कोई लैपटॉप लिया उस लैपटॉप में आपको कुछ इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं एप्लीकेशंस उसमें ऑलरेडी होती है राइट होता है ना कोई भी लैपटॉप ब्लैंक तो नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम डल के आएगा उसमें कुछ ना कुछ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीडिया प्लेयर कुछ चीजें आपको उसमें इनबिल्ट मिलती हैं और कुछ सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं अब जो सॉफ्टवेयर हम लोग ने डाउनलोड किया है अगर हम उसी को बार बार यूज करेंगे तो वो हमारी कैश मेमोरी में आ जाता है जो फाइल्स हम बार बार खोलेंगे वो हमारे रिसेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स में आ जाती है उनको फेच करना आपके लिए इजी हो जाता है ये ऐसे ही है सपोज एक किचन में अगर एक खाना बनाने वाली स्त्री है उसको चीनी नमक मिर्च ये सब कुछ हमेशा ही चाहिए तो इनको वो सबसे आगे रखेंगी डब्बों को शेल्फ में और जो कभी कभी चाहिए दाल चीनी गरम मसाला तेज पत्ता उसको पीछे रखेंगे जो चीज आपको चाहिए हमेशा उसको आप इजिली फेच कर सकते हैं जो कपड़े आपको बार बार पहनने हैं रोज के उसमें उसको आप आगे रखेंगे शेल्फ में जो कभी कभार पहनने वाले होंगे उनको आप पीछे रखेंगे शेल्फ में राइट तो ऐसे ही हमारे संस्कार हैं हम जब आए थे इस धरती पे अपना अपना रोल प्ले करने के लिए तो हम कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इनबिल्ट संस्कारों के साथ आए थे लेकिन यहाँ पे करते करते हमने बहुत सारे संस्कार डाउनलोड कर लिए और जो डाउनलोड कर लिए उनको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि देखा और लोग भी वो यूज कर रहे हैं ये भी गुस्सा कर रहे हैं ये भी तो मैंने गुस्से का संस्कार डाउनलोड कर लिया अब सबके साथ चलने के लिए मैं उसको ज्यादा यूज कर रही हूं तो वो मेरी कैश मेमोरी में आ गया वो रिसेंट फाइल्स में आ गया तो जो ओरिजिनल फाइल्स थी वो भी मेरे अंदर है डाउनलोडेड फाइल्स भी मेरे अंदर है लेकिन डाउनलोडेड फाइल्स को मैं ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर रही हूँ वो मेरी कैश मेमोरी में आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल फाइल्स नहीं है, प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी है, पर उसको मुझे सर्च करना पड़ता है कि ये कहाँ स्टोर्ड है, क्योंकि मैं खुद भूल चुकी हूँ ये कहाँ स्टोर्ड है। वो डब्बा बहुत पीछे चला गया मसाले का, प्योरिटी वाला, और क्रोध का डब्बा आ गया है। आपका प्रश्न था वैसे? ठीक है, एक इलस्ट्रेशन इस पे देती हूँ मैं, आप खुद बताइएगा। ठीक है, मैंने एक इलस्ट्रेशन ऑलरेडी दिया, आप बहुत पढ़ लिख लिए और आपको कहते हैं आप घर बैठिए, नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे जी। Not to work any time, you will be frustrated. Actually, मैं अगर आप देखें, हम इस चीज़ को देखें, हाँ जी, but they are doing something. They housewife है, they have left, they are not. No, it's not about paid. It's not about getting paid. They have chosen this as a higher purpose of their life than the job itself. So it's not about that. Abhi now we are not working. Right? Humse bhi log prashn poochte hain, aapne padhai padhi kya kaam aa rahi hai aapki? We are not working. But we have chosen a higher purpose for my life. It's not a higher purpose for everyone's life. It is a higher purpose for my life. So I chose not to work and I choose to use my skills in this way. That is my choice. Right? So it's not always about money or it's not always about resources. It is about fulfilling your purpose of life. If you are doing that for a higher purpose of life, that is okay. You are fulfilling your purpose of life. Right? Now, दूसरा example है, अगर आपके घर में कोई function हो, कोई शादी ब्याह हो, और आप उसके लिए बहुत दिनों से, महीनों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत short time में आपको उसको पूरा करना है, आप दिन रात एक कर रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं, अब जब वो पूरा हो जाएगा आप क्या करेंगे? अब बस मुझे सोने दो, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मैं अपने आप में सोऊंगा, अपने आप उठूंगा। अब जब आपकी थकान उतर जाएगी, आप उठना चाहेंगे, अगर आपको कहा जाए जबरदस्ती, नहीं उठना ही नहीं है, सोते रहना है, जबरदस्ती सोते रहो, क्या कहेंगे? सोना था फ्रेश होने के लिए, अब फ्रेश हो गए, अब उठ के दूसरा काम भी करेंगे ना, सोते क्यों रहे? कितना सोएगा व्यक्ति? इसका मतलब है, लेट मी कंप्लीट द इलस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है, हम आत्माएं जो हैं, अगर हमने बहुत पुण्य कर्म कर लिया, ऐसे तो बाय द वे वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक आल्सो, बट क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी है तो मैं इसको ब्रीफ में, दिस डिस्कशन विल नॉट एंड ओवर हियर एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू फुल्ली कन्विंस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई माई सेल्फ नो इट इज नॉट अ वेरी, ऐसा नहीं है मैंने एक ब्रह्मास्त्र कर दिया और आपको आपको संतुष्टि मिल गई। अगर ऐसे संतुष्टि मिलेगी तो ये ठीक भी नहीं है, जितना आप इसको रीजन करेंगे और अंतर तक समझेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन अभी उतना डेप्थ में लेके जाने का, तर्क करने का समय नहीं है, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ ताकि यू कैन स्टार्ट एटलीस्ट जर्निंग ऑन दैट एंड देन वी कैन डिस्कस ऑफ शेड्यूल एनी टाइम। आत्माएं जो है मुक्ति चाहती है कर्म के प्रभाव से, पर्टिकुलरली बुरे प्रभाव से। अभी भाई साहब कल यहां बैठे थे और वो कह रहे थे इस दुनिया में कई जगहों पे स्वर्ग है, क्यों ऐसा उनको लग रहा था? अब जिसको स्वर्ग है उसको बोलोगे मोक्ष ले लो, वो लेना चाहेगा? उसको नहीं चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली आत्माओं को कर्म के प्रभाव से और बुरे प्रभाव से मुक्ति चाहिए। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए आत्मा को जो उसको कर्म करते हुए भी, जीवन में होते हुए भी दुखों से मुक्ति का अनुभव हो, उस अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्ति। एक है मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति, ये अवस्था आत्मा की मुक्ति से श्रेष्ठ है। तो वो सुख से भी अटैच नहीं है ना, वो सुख से भी अटैच नहीं है। सो लेट अस कम बैक, बिकॉज ये बातें दीदी हमारे सामने बैठे हैं, और जब से दीदी की तो इतनी आयु हो गई ज्ञान में, और अभी तक वो गहराइयां जो है ना दीदी, ऐसे ये ज्ञान का अंत नहीं है। कहा जाता है पूरी धरती को कागज बनाए, जंगल को कलम बनाए, समुद्र को स्याही बनाए, और खुद माँ शारदा बैठ करके लिखे तो भी ये ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं पा सकते, पा सकते हैं, लेकिन उसको आत्मसार करने में हमें उतनी ही निष्ठा और उतना ही समय भी चाहिए। तो ये पर्पस नहीं है हमें कि हम सारा ही ज्ञान आपको इन दो दिनों में दे दें। जी लेकिन मनुष्य का जीवन केवल इस समय से सीमित नहीं है। होलिस्टिकली अगर हम देखें, पूरे सृष्टि चक्र को देखें, तो बहुत सारी स्टेजेस रही हैं। सो वी एस्पायर टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। वेल लेट्स ट्राई, आप कोशिश कीजिए, फिर हम आपका अनुभव जानेंगे। लेट्स ट्राई। ये हम सब ने कहा ही था, आई कैन सी मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स आपने खुद भी रियलाइज करके वही चीजें निकाली हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो कॉमन है, जो आपने बताया था और जो यहाँ पे है। सो आई थिंक इट डज नॉट नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ जो कि उसमें नहीं था, इट इज इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग ऑल्सो एंड नॉट रिकोगनाइजिंग सेल्फ वर्थ when we don't and loss of values when we don't recognize our self worth we have to rely on what worth others see in me and when that perception of others change my self worth also fluctuates and what I think about myself is reflected in my actions so definitely there's going to be an imbalance incoherency in my actions if I don't recognize my self-worth, because if I'm not doing it out of my self-worth, I'm doing it to please others, I'm doing it to pacify, satiate others. तो जब दूसरे की नीड बदलेगी, उनका मूड बदलेगा, उनको खुश करने के लिए मेरा बर्ताव बदलेगा, तो कहीं राग होगा तो कहीं द्वेष होगा, तो imbalance हो जाता है। loss of values कई बार ऐसा होता है सिस्टम के अंदर, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है तो हम बहुत, जैसे अगर घर में माता पिता हैं तो बच्चे सिविलाइज्ड रहेंगे, टाइम पे पढ़ेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, शू रैक में रखेंगे, बैग बैग की जगह होगा, कपड़े कपड़ों की जगह होंगे, और जैसे ही माता पिता घर में नहीं है उसके बाद में फिर they take it easy, फिर उनका राज्य। इसका मतलब है अगर हमारा वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, अगर हम दूसरे के हिसाब से उनके स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए अपना कर्म कर रहे हैं, इट्स लाइक वी आर लिविंग ऑन अ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर था तो सब कुछ वैल्यू बेस्ड चल रहा था, और वेंटिलेटर हटा दिया तो सांस का रेट घटने लग गया। सो लॉस ऑफ वैल्यूज इज ऑल्सो a reason for imbalance and impaired time crunch. हमने उस question में भी देखा था, there was an element about time crunch. So जब समय हमारे पास कम होता है, या we are not able to prioritize on things, we have too many things to do, we try to we try to do the urgent and delay the important ones which later become urgent. So we are jo Coves metrics hum log management mein padhte hain, so we are always in the fourth quadrant, urgent and important. And impaired decision making, definitely agar mera decision theek nahi hai, जैसे मैंने कहा आज का हमारा डिसीजन केवल हमारा वर्तमान नहीं, हमारा भविष्य. और कभी कभी लाइफ में अगर आप सपोज हाईवे पे जा रहे हैं और आपने कोई टर्न मिस कर दिया और आपको उस समय रियलाइज नहीं हो गया आपने वो मिस कर दिया, अगर रियलाइज होता कि यही टर्न था तो आप मुड़ ही जाते. सो यू हैव नॉट रियलाइज दैट यू हैव एक्चुअली मिस द टर्न. आगे जाकर के 1 किलोमीटर आगे जाके यू रियलाइज कि इतनी देर तो नहीं लगती, ये सब कुछ तो रास्ते में नहीं पड़ता. फिर आप किसी को पूछेंगे कि भाई वहां जाना था, कहां से टर्न लेंगे, वो बोलेगा भाई मैं तो यहाँ नया हूँ, मुझे पता नहीं. 3-4 लोग से पूछेंगे तब कोई एक सही रास्ता बताएगा. तो रास्ता भूलने के बाद में आपको रियलाइज हुआ वो टाइम वेस्ट, आपको सही व्यक्ति मिला जो आपको बता सके, वो व्यक्ति ढूंढने में जो टाइम लगा वो टाइम भी वेस्ट. फिर वो व्यक्ति कहेगा हाँ वो तो 1 किलोमीटर पीछे रह गया कट, अब ऐसा कीजिए इधर तो हाईवे पे कट नहीं है, 2 किलोमीटर और आगे जाइए, फिर यू टर्न आएगा, फिर वापस आ जाइए. तो वो 1 किलोमीटर वो ढूंढने में सही रास्ता जो बता सके उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट, 2 किलोमीटर जो और चलना पड़ा वो भी टाइम वेस्ट, फिर उतना ही 3 किलोमीटर वापस लौट करके आना पड़ेगा, उतना टाइम, इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग जजमेंट. थैंक गॉड हाईवे पर यू टर्न होते, लाइफ में कभी कभी यू टर्न किसी किसी डिसीजन में नहीं होते हैं. Then, वो कर्म चिपक गया, उसका प्रभाव चिपक गया. इसलिए impaired judgment, foresightedness, हम कभी कभी decision लेते हैं looking at the immediate benefit. तो अभी तो मेरा काम बन गया लेकिन आगे के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब वर्णित है. लेकिन यहाँ हमारा फोकस इस बात पे है कि हम पीछे किए हुए को तो मिटाएं चलिए, लेकिन आगे तो कम से कम ना करें, करें और फिर मिटाएं, उससे अच्छा है हम करें ही ना. वो सारा संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड है, अगर संस्कार ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो वो भी, उसको भी हम दग्ध कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं योग अग्नि से दग्ध करना. तो वो विधि हरेक को आए और वो हम कर सकें, क्योंकि हमें कर्म तो फिर भी करते ही रहना है ना. नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट, राइट जी जी. इसका मतलब ये है सिचुएशंस को तो आप लोगों ने, सिचुएशंस तो सारी हमें फेस करनी है, लेकिन उस हर सिचुएशन में आपके अंदर से जो इससे भाव निकल के आ रहा है वो तो यही है कि आपने हर सिचुएशन को एंजॉय किया है, उससे सीखा है. इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल जर्नी, दैट माइट बी टर्बुलेंट, बट इंटरनल जर्नी वॉज ऑलवेज गुड, कंटेंटेड. नहीं, एक होता है एक्सटर्नल जर्नी भी लोग चाहते हैं स्मूथ, जैसे अभी अगर आपको एक पथरीले रास्ते से निकलना है, आप रास्ता चेंज नहीं कर सकते, पथरीले से निकलेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी में अगर शॉक एब्जॉर्बेंट अच्छा होगा तो आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी, उस पथरीले रास्ते पर भी जर्नी स्मूथ रहेगी. तो हम रास्ता चेंज करने की बात नहीं करते, हम ये बात नहीं करते कि सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की, ये तो कहीं कहेंगे ही नहीं आपको कि लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी. लाइफ की प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है समय अनुसार ज्यादा भी आए कम भी आए, लेकिन उस पथरीले रास्ते पर चलते हुए आपको जो गाड़ी यूज करनी है उसका शॉक एब्जॉर्बेंट सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा. एंड नाउ वी कम टू स्ट्राइकिंग द बैलेंस इन वेरियस एरियाज. दीज आर सम बट देर आर मेनी एरियाज. लेट्स सी वन बाय वन. वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वर्क एंड लाइफ, कैन वी सेपरेट देम? Can we separate them? We are living for working and working for living. We cannot separate these two. So we need a balance in work and life. Ownership and detachment. Chidiya, ownership. Milo meer jati hai dana chugne ke liye. Aur kin ke liye? Wo jo ek din ud jane wale hai. तो वो जितना ओनरशिप है उतनी ही डिटैचमेंट भी उसमें है. इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस. एक माला है, ये माला तभी सुंदर लगती है जब इसके दाने एक समान हो. कोई दाना कैसा, कोई ऑरेंज, कोई ब्लू, कोई रेड, कोई गोल्डन, कोई व्हाइट, तो माला अच्छी लगेगी. उसमें भी सिमेट्री होती है. ठीक कह रहे हैं, मैं आई एक्सपेक्टेड दिस कमेंट. लेकिन उसमें भी सिमेट्री होती है. तो ये तभी, ये एक एक दाना इंडिपेंडेंट है लेकिन माला में पिरोया हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंटरडिपेंडेंट भी है. लाइफ में हम सभी इंडिविजुअल मोती हीरे की तरह है. हम सबका इंडिविजुअल वजूद है लेकिन इंडिपेंडेंट होते हुए भी हम सभी एक दूसरे के ऊपर, एक इकोसिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट है. तो ये इंडिपेंडेंसी भी नहीं खोनी है और ये इंटरडिपेंडेंसी भी मेंटेन करके रखनी है. किसी से अलग थलग भी नहीं होना है लेकिन अपनी फीलिंग्स का मालिक हमें खुद बनना है. ये भी बैलेंस जरूरी है. बिजी एंड इजी. मैं इजी रहूं इसलिए मेरे को बिजी नहीं करो, और मैं बिजी हूं तो मैं इजी नहीं रह सकता. दैट्स नॉट द परसेप्शन. And you not have to be sometimes busy and otherwise easy. You have to be busy and easy at the same time. I cannot comment on that situation because that's not my situation. I am enjoying. But aap jo keh rahe hain, that is the case for most of them. But even then, even if I'd never wanted to do this, but now because I have chosen, I should find a pleasure in this. If not, there's no point in pursuing it. क्योंकि मैं ये कर रही हूं और कब तक कर रही हूं ये मेरी चॉइस है. इट इज माई डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. फ्लेक्सिबिलिटी बट फर्मनेस. सेल्फ रिस्पेक्ट बट ह्यूमिलिटी. व्हाट डू वी सी इन दिस पिक्चर? इफ आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट आई विल डेफिनेटली हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. Which is a demonstration of humility. A master and a child. When the ball is in my court, I am the master. कई बार क्या होता है कई लोगों के साथ में कि जब पूछा जाता है ऐसा करना चाहिए तो हम कहते हैं हाँ कर सकते हैं, हो सकता है, और जब डिसीजन लेते फिर हम पीछे से बोलते थे देखो क्या कर दिया. Then we curse the system, the policy maker, the decision maker. जब हमसे पूछा गया था then I am the master. उस समय शायद हाँ होगा नहीं होगा, not this, उस समय अपनी बात हमें firmly कहनी है. लेकिन जब एक consensus ले लिया गया उसके बाद भी बच्चा बन करके उसका सबके साथ में पालन करना है. This is the point in becoming a child when you are told to become a master, and become a master in commenting when your role is to become a child and follow. So that balance is required. Love and law. Love is the biggest law. एक्चुअली में. एंड इट्स नॉट दैट आप जब लव को पालन कर रहे हैं उस समय आप लॉफुल नहीं है. यू नॉट समटाइम्स लवफुल एंड समटाइम्स लॉफुल. यू आर लवफुल एंड लॉफुल एट द सेम टाइम. दैट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस. That is the meaning of balance. Love is actually detachment. Love hai sneh. Love hai sneh. Wo to ek wo dikhai hui hai duniya ke hisab se ki sabse ghanishth jo pyar hota hai wo maa ka bacche se hota hai. To take you to the concept of love. But love itself is detachment. Love ka matlab hai sneh, pyar. Aur attachment hai uska vipreet, moh. प्यार का मतलब है ये मेरा है, ये खुश रहे. अटैचमेंट का मतलब है ये मेरा है तो मेरे साथ ही खुश रहे. राइट, थैंक यू. सो एंड सो बैलेंस बिटवीन आवर हेल्थ आल्सो. हेल्थ इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. हेल्दी पर्सन मीन्स हेल्दी इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स. सो हाउ डू आई अचीव ऑल दीज काइंड्स ऑफ बैलेंसेज? एक्चुअली the balance, we don't need balance between our responsibility and relations. Mostly hum inke beech mein balance karna chahte hain, responsibilities ya relations, inside ya outside. Right, balance is actually required inside. So the need is to balance the self from inside rather than anything outside. Agar aap dekhe responsibilities mein bhi kya hai, ek sense of ownership hai, ek responsibility hai, people hai, resources hai, टाइम है जिनको मैनेज करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है? वही लोग, वही सब चीजें हैं. देयर आर पीपल, देयर इज टाइम, देयर आर रिसोर्सेज. सो थिंग्स आर सेम ऑन बोथ द साइड. सो वी नीड नॉट एक्चुअली बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशंस. वी एक्चुअली हैव टू बैलेंस आवर स्टेट ऑफ माइंड बिटवीन द टू. एंड हियर इज वेयर द एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग द स्टेट ऑफ माइंड इन वॉट एवर एंड वेयर एवर एंड इन वॉट एवर कंडीशन वी आर. अभी मैं दीदी से कहूंगी, दीदी वहीं ले आते हैं माइक.
ओम शांति. सबसे पहले तो हम ओम शांति बोलते हैं. ओम शांति का अर्थ तो बहनों ने शायद समझा दिया होगा क्यों हम बोलते हैं. जैसे लोग आपस में जब मिलते हैं ना तो कोई नमस्ते करता है, राम राम करता है, कुछ ना कुछ तो बोलता है. लेकिन हमारे यहाँ पर कहीं भी आप जाएंगे तो आप सब पहले ओम शांति. ओम शांति का मतलब है, ओम का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ. और शांति हरे को चाहिए. आज इंसान मन से शांत नहीं है, बाहर से तो हम चुप हैं, अंदर से हमारी जो मानसिक स्थिति है. इसीलिए ये सब समझना पड़ता है. जो आप बैलेंस देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे थे, मुझे टॉपिक का तो नहीं पता, लेकिन जो मैं देख रही थी कि आज व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति मन बुद्धि दोनों की लड़ाई चलती रहती है. मन कुछ बोलता है, बुद्धि कुछ बोलती है. इसलिए मन बुद्धि की अंदर ही अंदर लड़ाई होती है. मन कहता है ऐसे करो, बुद्धि कहती है ऐसे करो. अब किसकी बात माने, है ना? जो सुना आपने, आत्मा में तीन चीजें होती है, मन, बुद्धि और संस्कार. ये तीनों चेतन है. मन आपने देखा है कभी? कभी मन देखा आप लोगों ने अपना? फिर बोल कैसे रहे हो मेरा मन शांत? जब देखा नहीं तो बोल कैसे रहे हो, बता कैसे रहे हो? इसका मतलब मन कोई चीज है ना जो आपको परेशान करती है. ज्यादातर लोग कहते हैं बहन जी मन शांत नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, मन लगता नहीं है. सभी बातों में मन लग जाता है, प्रभु में मन नहीं लगता. आप यहां बैठे हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन बीच में आपका मन कहीं भी चला गया, हमको क्या पता? आप तन से तो यहां बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका मन भी यहां हो. ठीक कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ठीक है. मन बड़ा सूक्ष्म है. ये जो आत्मा की बात आप लोगों की चल रही थी, तो आत्मा में तीन, जैसे हमारे शरीर में, बॉडी में ये हमारे ऑर्गन्स है ना, ऐसे आत्मा में तीन चीजें, मन, बुद्धि और संस्कार. कहते हैं मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है. या कहते हैं, कई बार कहते हैं इसकी बुद्धि मारी गई है. भाई बुद्धि है कहाँ? बुद्धि है क्या? पहले ये तो नॉलेज दो. मन की भी नॉलेज नहीं है, बुद्धि की भी नॉलेज नहीं है, और संस्कार जिसको स्वभाव भी कहते हैं, कहते हैं इस आदमी के संस्कार बड़े खराब है। कोई बच्चा ही होता है बहुत चंचल होता है, कहते हैं ये चंचल संस्कारों वाला है, संस्कार दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कैसे पता चल रहा है, जैसे उसके संस्कार होंगे वैसे वो कर्म करेगा। गुस्से वाला होगा तो गुस्सा जरूर करेगा, फिर कहेगा क्या करूं बहन जी मेरे संस्कार ही ऐसे है या स्वभाव ही ऐसा है। तो ये तीनों चैतन्य है, आत्मा जब जाती है शरीर से तो मन बुद्धि संस्कार तीनों से चली जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि मन क्या है, जिसको बड़े बड़े भक्ति में बहुत मन के बारे में बड़े बड़े भाषण करते हैं लोग, मन को जीतो मन को मारो पता नहीं क्या करो, दिखे तो मारे उसको, जो चीज दिखती ही नहीं है उसको क्या मारोगे। मन क्या है, जो आपका विचारधारा है वो आपका मन है, जो आपको संकल्प चल रहा है विचार चल रहा है ये आपका मन है। मन ने संकल्प किया आप यहां पहुंच गए, जिनके मन में विचार नहीं है वो बैठे वहां पर। अगर देखा जाए बहुतों को बुलाते हैं, कहीं कहते हैं चलो, कहीं कह के चलो चलो और फिर बैठ जाते हैं, कहने मेरा मन नहीं मानता। इसका मतलब आज इंसान अपने मन मत पे ही चल रहा है, जो मन कहे वो करता है, गुस्सा करे गुस्सा करना, कहीं इधर जाना उधर जाना, मन जो है वो चंचल है, बहुत चंचल है। हमारे मन में तीन प्रकार के विचार चलते हैं, अच्छे विचार बुरे विचार और वेस्ट विचार। अच्छे विचार कभी कभार चलेंगे, और जो हमारे फालतू विचार है व्यर्थ के विचार है और नेगेटिव है चलते रहते हैं। आप देखो जब हमारे मन के अंदर कोई नेगेटिव विचार आता है एक के पीछे कितने आते हैं, और अगर वेस्ट देखेंगे वेस्ट की तो बात ही नहीं है, वो तो नॉन स्टॉप होते हैं, एक आया दूसरा आया, कंट्रोल नहीं है। जब माइंड कंट्रोल नहीं है तो शांति कहां से आएगी। आज इंसान दूसरे पर कंट्रोल करना तो चाहता है, व्यक्ति पे कंट्रोल करेंगे, बच्चों पे कंट्रोल करेंगे, स्टूडेंट पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन माइंड को कंट्रोल करो हो ही नहीं था। तो हमारे यहाँ जो योग सिखाया जाता है ना, उस योग से हमारे में सबसे पहले शक्ति माइंड कंट्रोल, जिसका मन कंट्रोल नहीं है उसकी इंद्रियों कभी कंट्रोल नहीं होगी। आप देखो जो मन में आता है वो मुंह पे निकलता है, जो मुंह से निकलता है वो कर्म में आता है। अगर मन में मेरे कोई चीज अच्छी है शांति वाली है तो शांति के बोल होंगे, अगर मेरे मन के अंदर अशांति है डिस्टर्बेंस है तो मेरे मुंह से वो ही निकलेगा। तो आज इंसान जो बोल रहा है जो देख रहा है जो सुन रहा है जो कुछ भी कर्म कर रहा है उसमें अशांति अशांति है। इसीलिए लोगों को सब कुछ होते हुए भी अशांति है। आज इंसान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, धन है दौलत है गृहस्थी है मकान है मोटर है बंगलो है सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। सर आप पूछें अपने आप से, आप सब जो यहाँ बैठे हैं अगर देखें तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया, तन अच्छा दिया मन अच्छा दिया धन अच्छा दिया परिवार अच्छा दिया मान इज्जत दिया, क्या नहीं दिया, बाकी क्या नहीं है जो भगवान ने नहीं दिया। हे भगवान शांति दो, यानी जो चीज आज हम खोए हैं उसको हमको कैसे लेना है उसके लिए हमको सीखना चाहिए। ये जो आप सुन रहे हैं ना यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में, इससे हमको माइंड कैसे कंट्रोल हो, मन कैसे शांत रखें, हम भी शांत रहें हमारे बच्चे भी शांत रहें हमारा परिवार भी शांत रहे। अगर हम ही शांत नहीं तो हमारे बच्चे कैसे शांत रहेंगे, आपका घर का वातावरण कैसे शांत रहेगा। इसलिए आज व्यक्ति ये शांति ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई तीर्थ जाता है कोई मंदिर जाता है कोई गुरुद्वारे जाता है कोई घूमने फिरने चला जाता, चलो मन थोड़ा बहल के आ जाए घूम के आ जाए, फिर क्या होगा भाई, जब वहां से आ जाओगे फिर तो वही बात होगी। कहीं हरिद्वार भी गए ऋषिकेश भी गए, कहीं लोग घूम के आते हैं फिर वैसे के वैसे, तो फायदा क्या, पैसा भी खर्चा किया तकलीफ भी किया मिला भी कुछ नहीं। इसलिए मैं अपनी लाइफ के आधार पे कहती हूँ, मैं भी गृहस्थी अपने लाइफ में, जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी थे परिवार में। लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हमको ज्ञान मिला, पहले दिन का मेरा अनुभव है, इतनी शांति मिली योग में। मुझे योग वो कुछ नहीं आता था, बस मुझे बताया कि ऐसे बैठ जाओ, उस शांति ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाया। नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों से शुरू में तो बड़ा डर लगता था, सीधी सी बात सुना दूं आप लोगों को तो सुनानी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों से लोग डरते बहुत है। क्यों डरते हैं? बोलते हैं एक भगाती है, दूसरा जादू करती है, भाई बहन बनाती है, तीन बातें बोलते हैं। शायद आप लोगों ने भी सुनी होंगी, नहीं सुनी हो तो मैं सुना देती हूँ लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग, सुनानी नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन मेरे को मन में ऐसे ही आया कि लोगों की भ्रांति, अच्छी चीज का अपोजिशन जरूर होता है। आप दुनिया में जितने अच्छे व्यक्ति गए, सबकी अपोजिशन हुई, बुरे चीज की कोई अपोजिशन नहीं। लोग पिक्चर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, इतना सब कुछ दुनिया में हो रहा है, कौन ऐतराज उठा रहा है? कुछ नहीं। और कोई सत्संग जा रहा होगा कि अच्छी जगह, वहां नहीं जाना, तुम साधु बन जाओगे। साधु नहीं बनो, परंतु क्या बनो? तो परमात्मा कहता है कि आज संसार में परमात्मा से प्रीत नहीं है। तो आप तो जो टॉपिक आप लोगों की है, मुझे नहीं पता किस टॉपिक पे चल रहा था, लेकिन आत्मा के बारे में जो मैं सुन रही थी, तो आत्मा जो है अति सूक्ष्म है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे हो, कैसे मानोगे कि आपके अंदर आत्मा है? आत्मा तो नहीं दिख रही है ना, लेकिन कैसे मानेंगे कि मैं आत्मा हूं? आत्मा बोल रही है, देख रही है, सुन रही है, चल रही है, आप कर रहे हैं, ये जो कौन कर रहा है। इसीलिए देखो दो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मैं और मेरा। मैं हूं आत्मा, मेरा है शरीर, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बहन। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूं ना। अगर ये मैं निकल जाए तो मेरा रहेगा कुछ कहोगे इसका मतलब वैल्यूएबल चीज है मैं, आत्मा। लेकिन आज मैं का उल्टा अर्थ ले लिया। मैं कौन हूं? मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं। आज मैं में अभिमान आ गया, इतना बॉडी कॉन्शियस आ गया लोगों, मैं लड़ाई कर लेते हैं, मैं बड़ा, मैं जो बोलता हूं ठीक हूं, तुम जो बोलते हो गलत बोल रहे, तो मैं और तू की लड़ाई हो गई। इसीलिए ये ज्ञान बहुत हमारे को जीवन में फायदा देता है। मैंने तो देखा है कि इस ज्ञान मिलने से शांति, शक्ति, प्रेम, आपस में प्रेम क्या होता है, बिल्कुल दुनिया में है ही नहीं सच्चा प्यार। तो आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। मैं तो देखने के लिए आई थी, मैं सुनाने नहीं आई थी, मैं आई थी दिल्ली से तो मैंने कहा मैं जा सकती हूँ? कहते हैं क्यों नहीं जा सकती। तो मैं आशा बहन से पूछा, मैं कहा चलो थोड़ा देर जाऊं। तो ये बहन जी, क्योंकि मुझे यहाँ की बहनें मुझे जानती हैं तो बड़ी बहन जी है, बड़ी बहन, बड़ा छोटे की कोई बात नहीं है इसमें, ये कोई कम है क्या? बड़ा छोटा इंसान गुणों से होता है, कर्तव्य से होता है, आयु से नहीं होता, अनुभव की बात होती है। कहीं अनुभवी छोटी बहन ही हमारी बड़ी अनुभवी है, तो इसके लिए इनको भी जितना जीवन में अनुभव है, क्योंकि ये जो नॉलेज है सुनने की नहीं है, लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखो। डॉक्टर भी कहता है मेरी दवाई खा के देखो तो पता चलेगा आपका दर्द ठीक होता है या नहीं। तो आज जो हमारी अशांति है, दुख है, इंसान दुखी है, सब कुछ होते हुए भी मिनट मिनट में रो रहा है, कभी देखो मूड खराब करके बैठा है, कभी टेंशन में बैठा है, कितनी मानसिक बीमारियां हैं। मन की बीमारी ज्यादा है, तन की बीमारी कम है। और जितने आपके शारीरिक रोग है उसका कारण हमारा मन है। पहले थी जमाने में, पहले ना इतने डॉक्टर थे नैतनी बीमारी थी। आज डॉक्टर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियों का अंत ही नहीं है। उसका सारा कारण है मन का रोग। मन का रोगी है, अब मन के रोगी से बनो योगी। यहाँ बनो योगी, यहाँ बनो रोगी, यहाँ बनो भोगी। तीन प्रकार के लोग होते हैं, समझा? तो सबसे अच्छे योगी होते हैं। योगी करते सब कुछ है, ऐसे नहीं योगी का मतलब जंगल में बैठ जाओ। हम भी इसी संसार में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कर्म योगी, कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना, इसको कर्म योगी कहते हैं। तो आप सभी आए हैं, ये बड़ा नॉलेज बहुत सहज है देखने में लोगों को। आजकल तो ये जो ये दिखाते हैं और समझाते हैं, ये सब जो है ये अभी के दुनिया मुताबिक ये सब मिसाल देने पड़ते हैं। नहीं जो बिल्कुल ये नॉलेज, ज्ञान और योग जो है इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब ये जो बैलेंस सुना रही थी, लव एंड ला का बैलेंस कैसे रखें, सुन तो लिया लेकिन हम कैसे रखें? मैं तो हमेशा कहती हूँ इजी बिजी मैन वही अच्छा है जो इजी है। जो बिजी होके इजी नहीं है, उसका बिजी पने में टाइम टेंशन ही है। हम बिजी रहते हैं परंतु इजी रहते हैं। मैं अपनी पर जीवन की बात करती हूँ, हम बिजी रहते हैं, फ्री नहीं रहते हैं। ऐसे नहीं ज्ञान योग सीखते हैं तो सारा दिन क्या ऐसे आंख बंद करते ऐसे बैठे हैं क्या? ऐसे तो नहीं करेंगे ना, हम भी काम करते हैं सब। हमारे यहाँ तो भोजन भी अपने हाथ से बनाते हैं, कभी किसी के हाथ का भोजन नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे कभी सबका भोजन नहीं खाएंगे। अपने हाथों से बनाना, अपने हाथों से सब काम करना, पहले जमाने में करते थे ना लोग, आज तो सब सुस्त हो गए हैं। सच्ची कहती हूँ, आज के जमाने में शरीर काम कोई नहीं करते हैं लोग, इसलिए टीवी मोबाइल खिलौने मिले हैं, खिलौने से खेलते हैं सारा दिन। पहले जमाने में तो ये था ही नहीं, आज बच्चे बच्चे के हाथ में हम देखते हैं और बोलो तो उनको गुस्सा चढ़ता है, कहीं गुम हो जाए किसी का मोबाइल, पा देखो पीछे देखो उसकी वो हालत, किसी का गुम हो जाए ना कहीं माँ तूफान मचा देंगे जब तक मिलेगा नहीं। तो क्या है, भगवान को ढूंढने के बजाय आज कहाँ लोग जाके पड़े हैं, कहाँ बुद्धि है लोगों की, बताइए फिर शांति कहाँ से मिलेगी? है ना संसार, तीन चीजें हैं लोगों के पास। पहले तो सिर्फ रेडियो होता था, रेडियो सुनते थे लोग, ठीक है, फिर टीवी देखते थे, अब वो भी गया, अब तो जेब में है, टीवी भी जेब में है तो मोबाइल भी जेब में है। सारा दिन मैं कहती हूँ करते क्या हो आप लोग? कहते हैं बहन जी आपको क्या पता, मैं क्या मुझे जरूरत ही नहीं है। यानी वो सारा दिन उसी में देखना, आंखें नहीं लगती है, पैसा नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, और पूछो मेरे पास टाइम नहीं है, अरे कहाँ गया तेरा टाइम, कहाँ जाता है लोगों का टाइम, काम भी नहीं है और आराम भी नहीं है। इसीलिए किसी एक माता ने मुझे बोला था कि मेरे को ना काम है ना आराम है, तो मैं क्या करती क्या है भाई, काम नहीं है तो आराम करो। तो आज की दुनिया में वही हिसाब है,
तो बहुत काम है, ये क्या करें,
क्या काम है,
बहुत काम है,
क्या काम है, हाँ इनको तो है,
इनको गवर्नमेंट का बहुत काम है।
मैं ये नहीं कहती हूँ काम नहीं है, जो लोग कर रहे हैं ये टाइम वेस्ट है, वो काम तो इनको जरूर करना है, तो बड़े बड़े ऑफिसर है, इनको कैसे नहीं करना है?
काम करते हुए इजी रहे, एक चीज बताइए।
हाँ तो काम करते इजी रहे वो, जब ये आएंगे योग सीखेंगे तो सिखाएंगे हम। योग करो और कर्म भी करो, हम कर्म योगी है, परंतु हम क्या बन गए, क्या बन गए, गर्म योगी, नाम सुना देती हूँ, हम गर्म योगी नहीं, हम गर्म योगी, हर मिनट मिनट में हम गर्म होते रहते हैं, अंदर ही अंदर टेंशन, अंदर ही अंदर गुस्सा, अंदर ही अंदर चिड़चिड़। तो वो जो अंदर जो हमारी शक्ति है ना वो जा रही है, नहीं तो साइलेंस इज पावर कहा जाता है, आज नहीं है वो साइलेंस। इसलिए बहुत जीवन में आप लोगों को मिलेगा अगर आप हमारा यहाँ का जो 1 वीक कोर्स है ना वो करने के बाद ये सब समझ में आएगा। वो तो अब ये मेहंदी सुनाएगी वन वीक कोर्स में, फिर ये कैसे, पहले ABCD पढ़नी पड़ेगी ना, ये स्कूल है, हम इसको पाठशाला नहीं कहते, स्कूल नहीं, वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ भी हमको अपनी आत्मा की जो अंदर की स्टडी है वो करनी चाहिए। बाहर से तो बहुत पुस्तक पढ़ लिए, बहुत किताब पढ़ लिए, अब सेल्फ स्टडी करो, जो हमारी आत्मा की, यानी मैं आत्मा हूँ क्या हूँ, जरा पढ़ के देखो अंदर, बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे अंदर। ओम शांति।